यशोदनन्दन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदनन्दन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो आज पवित्रों में भी पवित्र दिन आज का जो दिन है पवित्रों में भी पवित्र है, है? पूरा महीना पवित्र है कार्तिक का और उसमें भी आज का दिन उससे भी ज्यादा सर्वाधिक पवित्र है। कार्तिक का जो महीना है ये राधा रानी का महीना कहा जाता है, है? और इसी में ही राधा कुंड का आविर्भाव हुआ अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी है ना। जैसे राधा रानी काफी जन्म अष्टमी तिथि को हुआ, कृष्ण का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ, तो राधा कुंड श्याम कुंड का भी आविर्भाव अष्टमी तिथि को हुआ है ना। तो राधा रानी के महीने में ये राधा कुंड का आविर्भाव, पूरा महीना किसका है, राधा रानी का है ना, है ना। तो आज के दिन की जो लीला है ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 36वें अध्याय में, इसमें राधा कुंड का तो वर्णन नहीं आता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो है जो टिप्पणी है वो इसमें डाल दी गई है, जिसमें 20 श्लोकों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बीच में वो जो है अपनी टिप्पणी के श्लोक दिए हैं, है ना। तो वो जो है मतलब बहुत ही अद्भुत हैं राधा कुंड के आविर्भाव के विषय में। लेकिन राधा कुंड का आविर्भाव का जो कारण है वो कुछ और ही था, वो कौन सी घटना थी जिसके कारण राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, आपको पता है? अरिष्टासुर है ना, अरिष्टासुर का कृष्ण ने वध किया तो वो एक कारण बन गया है ना, अरिष्टासुर का वध कारण बन गया राधा कुंड के आविर्भाव में, है ना। क्यों क्यों? बैल के रूप में था तो कृष्ण के ऊपर दोष लगाया गया कि आपने बैल की हत्या की है ना, तो ये जो है मतलब कारण बन गया है ना। तो पहले हम अरिष्टासुर के कथा सुनेंगे, अरिष्टासुर का वध। तो आज के दिन भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, है ना। तो ये जो है प्रारंभ होता है 10वें स्कंद का 36वां अध्याय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया, वो बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को छत विक्षत करके उसे कपाने लगा। अथ दर्घ्या गतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महीम महाकुत्कायः कंपयन् खुरे विक्षताम। अरिष्टासुर कितना बड़ा बैल था, बैल के रूप में असुर कितना बड़ा बैल था, गोष्ठ में आ गया, गोष्ठ में आ गया यानी गोपों के स्थान में आ गया है। महीम कंपयन खुर विक्षताम, पूरी जमीन को कंपा रहा है। सोचिए कितना बड़ा बैल था, कितना बड़ा असुर था कि पृथ्वी कांप रही है। हरि बोल, नींद आ रही है, पृथ्वी कांप रही है और आपको नींद आ रही है ना? उसके अपने खुरों से जो है पृथ्वी को विक्षत विक्षत कर रहा है, छत और विक्षत, छत करते हैं यानी घाव पैदा करना, तो छत होता है उसको, है ना। तो पृथ्वी में घाव पैदा कर रहा है और छत विक्षताम, विक्षत कर रहा है, विशेष रूप से छत कर रहा है अपने खुरों से है? और पूरी पृथ्वी कांप रही है उसके कारण, पृथ्वी कांप रही है ना। कैसा भयानक दृश्य है। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ जब वे गोपियों के साथ नृत्य करने की तैयारी कर रहे थे। ये विष्णु पुराण में है ना, ये और विशेष सूचना है कि आज के दिन अरिष्टासुर आया था, किस समय आया था। प्रदोषार्धे कदाचित तो रासाशक्ते जनार्दने त्रासियन समतो गोष्ठम अरिष्टा समुपागतः। प्रदोष के आधे समय में आया था, जब भगवान जो है रास के लिए आ सकते हैं है? और उस समय जो है गोष्ठ को जो है आतंकित कर रहा था है? अरिष्ट गोष्ठ को आतंकित कर रहा था। तो प्रदोष काल का आधा समय क्या होता है, प्रदोष काल शाम के या रात्रि के 8:10 से 10:34 तक चलता है, 2 घंटा 24 मिनट का होता है प्रदोष काल, है ना। तो आधा प्रदोष काल तो 8:10 में 1 घंटा 12 मिनट और जोड़िए, कितना हुआ, 9:22 पर आया। आज रात में जो है वो समय होगा 9:22 का, है ना, उस समय जो है वो अरिष्टासुर आया है ना। मतलब रात के 12 तो राधा कुंड का आविर्भाव हुआ ना, है ना। तो ये समय जो है मतलब इस प्रकार से चल रहा है कि 9:22 से जो है वो कारण बना राधा कुंड के आगर भाव का, है ना। तो वो आया उस समय और रमाते हुए धरती को खुरों से कुरेदा उसने, अपने पूछ उठाए, आंखें चमकाता और सींगों के नोकों से बांधों को चीरने लगा और बीच बीच में मलमूत्र भी कर रहा था। रंभमाण खरतरम पदाचा विलेखन महीम उद्यम में पुच्छम प्राणी विषाणा ग्रेण चोधरन किंचिन किंचिन चक्रन मुंचन मूत्रयन स्तंभ लोचन। तो पहली बात है, उस समय तो अंधेरा था, रात्रि के 9:22 अंधेरा रहा होगा, या हो सकता है चंद्रमा हो उस समय, चंद्रमा की रोशनी हो, है ना। तो उसकी आंखें चमक रही हैं अंधेरे में, इन लोगों की आंखें चमकती हैं जो दुष्ट स्वभाव के पशु होते हैं, उनकी आंखें चमकती हैं अंधेरे में, उसकी आंखें चमक रही थी, है ना। और रंभ माणा खरतरम, खरतरम रंभ, रंभ रमा रहा था वो, है ना। तो खरतरम, खर का मतलब होता है बहुत कर्कश आवाज में, और खरतरम माने बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा कर्कश आवाज में रमा रहा था वो, है ना, आवाज कर रहा था। खरतरम पदाचा विलिखन महीम, और जमीन को जो है पैर में लिख रहा है, अपने पैर से जमीन में लिख रहा है, मतलब ऐसे कर रहा है तो बड़ी जो है ना, ये समझो कि रेखा बन जाती है, बड़ी गहरी रेखा बन जाती है उसके पैर से, है ना। तो जमीन को जो है विशेष रूप से कर रहा है, है ना। उद्यम में पुच्छम व प्राणी, और पूछ को उठा करके व प्राणी विसारा गिरने चौधरन, है अपने सींगों से बांधों को जो है क्या कर रहा है, चीर रहा है। बांध, बांध क्या होता है, पानी, यहाँ पानी बंधा हो तो सींग से जो है, जिससे कि पानी जो है मतलब जो बंधा हुआ है वो बहेगा, उससे और दुर्घटना होगी, है ना। तो बांधों को जो है सींगों से जो तोड़ रहा है ना। और किंचित किंचन छकरन मंचन मूत्रयन स्तंभ लोचना, है ना। तो मल मूत्र भी करता है। फिर हे राजन, तीखे सिंगों वाले अरिष्टासुर के डिल्ले को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। कितना ऊंचा था वो कि बादल मंडरा रहे हैं पर्वत समझ करके, इतना उसका डिल्ला, है ना। जब ग्वालों गोपियों ने उस असुर को देखा तो भयभीत होते, आप देखोगे तो कैसा लगेगा, इतना बड़ा असुर, है ना, भयभीत हो रहे। उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयानक थी कि गर्भिणी गौएं स्त्रियों के गर्भपात हो गए, गर्भवती गाय और गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो गए, इतना भयानक ना। यस नरादि तेनांग निस्थुरेण गवाम नृणाम पतंते काल तो गर्भा स्रवंति स्म भये न वय निर्विशंति घना यश ककुद्य चल संकयाम तम तेषण श्रृंग मुन्वीक्ष गोप्यो गोपाश तत्र सुः। हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए गोविंद के पास दौड़े, है ना। पशुद्रोर्भीता राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्ण तिते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कभी भय का अवसर हो तो क्या करना है, कृष्ण कृष्ण, ये भय के अवसर में, है ना, हर समय कृष्ण कृष्ण बोलना है, है ना। सुख हो दुख हो, हर्ष हो भय हो, है ना, शोक हो, हर समय कृष्ण कृष्ण बोलने का एक स्वभाव बनना चाहिए, कि ब्रजवासियों का स्वभाव है, है ना। और भय के अवसर पर भी वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और गोविंदम शरणम यजु, और गोविंद की शरण ली उन्होंने, गोविंद की शरण ली, है ना। अब गोविंद की शरण कैसे ली, गोविंद को तो वो भगवान नहीं मानते हैं, वो तो अपना मतलब पुत्र या मित्र या बालक मानते हैं, फिर शरण कैसे ली। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गोविंद कृष्ण जो है, हालांकि हमारा ही पुत्र है या मतलब बालक है, छोटा बालक है ब्रज का, लेकिन उसके सौभाग्य से हमारी भी रक्षा हो जाएगी। यहाँ पर जो भाव है वो ये है कि कृष्ण का इतना सौभाग्य है कि उसकी रक्षा होती है, बड़े बड़े संकटों में कृष्ण की रक्षा हुई, है ना, तो भगवान तो नहीं मानते, लेकिन भाग्यवान मानते हैं कृष्ण को, है? तो हम कृष्ण से अगर जुड़े हैं तो कृष्ण के भाग्य से हमारी भी रक्षा हो जाएगी, इस तरह से भी उन्होंने कृष्ण की शरण ली, है कि नहीं? ये भी भाव है ना इस प्रकार का, कि कृष्ण के भाग्य से हमारी भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण का इतना भाग्य है कि बड़े बड़े संकटों में उसकी रक्षा हुई ना। और फिर ये भी भाव है कि अगर मान लो हम मरे भी तो अगला जन्म भी हो तो कृष्ण के साथ ही हो, हम जो है जीवन और मरण जितने भी जन्म हो कृष्ण के साथ ही रहें, इसलिए भी कृष्ण की शरण ली। अगर शरीर भी छूट जाए तो जहाँ भी हम जाएं तो कृष्ण का संग ही मिले, इस तरह इस भाव से जो है ना। अच्छा, जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे भागा जा रहा है तो उन्होंने ये कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत। तत्पश्चात उन्होंने उस वृषासुर को ललकारा, भगवान पितन वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम माँ भेष्टि माँ भेष्टे गिरा श्वास है वृषासुरम उपहावय। रे मूर्ख रे दुष्ट, तो क्या सोचकर ग्वालों को और पशुओं को डरा रहा है, जबकि तेरे जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं यहाँ पहले से हूँ। मैं पहले से तो उसको दंड देने के लिए खड़ा हूँ, है ना, तो उनको तुम क्यों डरा रहा है? गोपाल है गोपाल है पशु फिर मंद है त्रासित है केवल सत्यम है मैं शास्त्र दुष्टा नाम द्वंद्विधा नाम दुरात्मा नाम। तेरे जैसे दुरात्मा और दुष्टों को जो है शासन करने वाला मैं पहले से हूँ, और मेरे होते हुए तू उनको डरा रहा है, भगवान बोले। ये कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपने हथेलियों से अपनी बाहें ठोंकी, इस तरह से मैं हूँ भगवान ने बाहें ठोंकी, और जोर से ध्वनि की जैसे अरिष्टासुर बहुत क्रोध हुआ, मुझे ललकार रहा है, इतनी हिम्मत कि मुझे ललकार रहा है, आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं जो मुझे ललकारे, है ना। तब भगवान अपने बलशाली सर्प जैसी बाहें अपने सखा के कंधे पर डालकर असुर के मुंह करके खड़े हो गए, सखा के कंधे में हार भी डाल लिया, जैसे बिल्कुल तैयार नहीं है युद्ध करने के लिए, है ना, मतलब तिनका ही मतलब ये भी नहीं है कि भाई कुछ तैयारी करें अपने, है ना, तो ऐसे खड़े हैं जैसे कि उसको तिनका भी नहीं समझा है ना, इतना तुच्छ है, तो ऐसे खड़े हैं बात करके असावधानी से, है ना। एक तो ये होता है कि भाई तैयार हो अपने बिल्कुल सावधान, है ना, कि कोई बड़ा मतलब योद्धा आ रहा है तो अपनी तरफ से सावधान, उसका आक्रमण होगा तो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ अपनी तैयारी करें, तो कुछ है ही नहीं कृष्ण के अंदर, है ना, ऐसे खड़े बड़े आराम से। इतिहास फोटिया चतोरिष्टम तरसम देन कोपयन सख्युरन से भुजा भोगम प्रसारिया वस्थितो हरि। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण उस अज्ञानी असुर के प्रति उपेक्षा प्रकट करने लगे, है ना, उपेक्षा प्रकट करने लगे ना, मतलब कुछ समझे नहीं, तिनका भी नहीं समझ रहे उसको, क्या कर लेगा। सब लोग भाग रहे हैं डर के मारे, और वो जो है बड़े आराम से खड़े हैं जैसे कुछ डर ही नहीं है, है ना, क्या करेगा तू, तू इधर आ। इस तरह उकसाने पर अर्श ने अपने खुर से धरती को रे दी, अब वो उसने जो है लक्ष्य बनाया ना, तो पहले धरती को खोदा उसने, है ना, धरती को खोद करके जो है वो लक्ष्य बना रहा है कि कहाँ जाना है मुझे, है ना, लक्ष्य बनाया उसने। और फिर क्रोध के साथ कृष्ण के ऊपर झपटा, अब सोचिए कितना भयानक दृश्य है। कृष्ण के ऊपर जो है झपटा, इतना बड़ा असुर है कृष्ण के ऊपर झपट रहा है ना, उसकी उठी हुई पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। सोपे बम को पितोरिष्टा खुरेणा वनि मुल्लिखन उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघा क्रुद्धा कृष्णम उपाद्रव। अपने सींगों के अग्रभाग सामने की ओर सीधे किए हुए कृष्ण को लक्ष्य बना करके सींग जो है सिंह के नोक जो है, सिंह की नोक को जो है कृष्ण की तरफ उसने लक्ष्य बनाया कृष्ण को अपने सिंह के नोकों का। रेस्ट नहीं किया तो अब नींद आ रही है, अब ये समय सोने का टाइम है, अब नींद आ रही है, रेस्ट नहीं किया। सिंहों की नोक को जो है कृष्ण की तरफ करके और सीधे अपनी आंखों की बगल से तिरछे घूर कर भय देखा कर अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो। अग्रणस्थ विषाणाग्रह स्तंभा श्रृंगलोचनोचुतम कटाक्षिप्या द्रवंतूर्णम इंद्र मुक्तो सनिर्यथा। इंद्र जो है जब वज्र छोड़ते अपने हाथ से तो पर्वतों को भी चूर्ण कर देता है वज्र। वज्र बहुत बड़ा आयुध है, आयुधा नाम महम वज्रम, सब प्रकार के आयुधों में वज्र बहुत खतरनाक है ना। तो वो जो है भगवान कृष्ण की तरफ ऐसे चला जैसे वज्र, वज्र की तरह है ना। भगवान कृष्ण ने असुर को सिंहों से पकड़ लिया वो सिंह पकड़े जिन सिंहों को करके आगे करके वो भगवान के पास आया था, कितनी वेग से आया था है ना। भगवान को जो है कुछ भी नहीं लगता उसमें उसको ऐसे सिंह पकड़ दिए हैं, ऐसे सिंह पकड़ लिए और 18 कदम पीछे उसको धकेला 18 कदम पीछे धकेला उसको। जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है, भगवान तो और भी पीछे कर देते उसको, फिर उसकी हिम्मत नहीं होती तो थोड़ा लड़ाई का आनंद भी तो मिलना चाहिए इसलिए हाथी हाथी को पीछे धकेलता है तो धीरे धीरे ही धकेलता है ना, है ना। तो ये कुछ युद्ध करने का आनंद भी तो चाहिए ना भगवान को, इसलिए है ना। गृहीत्वा श्रृंगे स्तंभा अष्टादश पदानि सहम तत्वोवाह भगवान गजः प्रति गजम यथा। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हाँपता हुआ सारे शरीर पर आए पसीने से तर हो गया और क्रोध में अचेत होकर उन पर झपटा। बहुत गुस्सा आ रहा उसको, अरे बोल नींद आ रही, खड़े हो जाओ ना, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, क्योंकि रेस्ट नहीं किया ठीक से ना इसलिए। हाँ क्या सुना, बहुत गुस्सा आया उसको, पसीने से तर हो गया और बहुत गुस्सा आया उसको है। सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरम आपतन शून्य सर्वांगो निशुसन क्रोध मूर्छिता। अब भगवान ने उसको पीछे धकेला लेकिन फिर भी उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो समझ नहीं रहा है कि ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। असुर की बुद्धि कैसी होती है ना, वो नहीं समझ पाया कि भगवान ज्यादा शक्तिशाली है ना, क्योंकि उसको जो है धकेल करके और फिर भगवान आ गए कि फिर से वो मतलब युद्ध करे इसके लिए। तो वो उसने फिर ये समझा कि अभी डरे हुए हैं कृष्ण, डरे हुए हैं मुझसे है ना। तो एक जो है इनके अंदर ये भाव रहता है क्योंकि अपनी तरह वो तो सोचते हैं कि अगर कृष्ण डरे नहीं होते तो मुझे और मारते है ना, तो इसका मतलब है कि मुझे धकेल करके पीछे हो गए हैं कृष्ण, मुझसे डरे हुए हैं, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया कि एक निर्बल व्यक्ति जो है और मुझे पीछे धकेल दे, जबकि कमजोर व्यक्ति मुझसे कमजोर है ना, मुझे पीछे धकेला है। तो बहुत गुस्से में फिर से झपटा कृष्ण की तरफ। जो है अरिष्ट ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने उसके सिंह पकड़ लिए, अपने पांव से उसे धरती पर गिराया, अपना पैर उसके पैर में मारा, सिंह पकड़े और पैर उसके पैर में मारा और नीचे गिरा अड़ंगी अपना पैर पैर में मार करके और उसको नीचे गिराया, सिंह पकड़े और पैर पैर में मार करके धरती में गिराया। तब भगवान उसको ऐसा लताड़ा जैसे गीला कपड़ा हो तो गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है पैर से, तो बहुत भारी होता है ना कपड़ा, तो बहुत भारी कपड़ा होता है तो उसे निचोड़ने के लिए पैर से दबाया जाता है, होता ना बहुत बड़े बड़े कपड़े होते हैं पैर से, हाथ से नहीं निचोड़े जाते हैं, उसको बिछा देते हैं फिर पैर से जो है पैर से इसको निचोड़ा जाता है, तो भगवान जो है इसको पैर से दबा दबा करके उसको गीले कपड़े की तरह निचोड़ रहे हैं उसको। तो बहुत बड़ा कपड़ा है ना भारी कपड़ा है तो उसको गिरा करके निचोड़ रहे हैं गीला वस्त्र। अंत में उन्होंने उसका एक सिंह उखाकर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक दंड के समान धराशायी नहीं हो गया, है ना। क्योंकि इधर से दबाते हैं तो उधर उठता है, इधर से दबाते उधर से उठता है ना। ये कपड़ा सही नहीं है ये तो भगवान तो छोटे से हैं तो पैर दबाते हैं तो इधर से दबता है तो उधर उठता है, उधर उठता है ना। तो सिंह से उसको अच्छी पिटाई की, जहां जहां उठे पीट पीट करके उसको पूरा फ्लैट कर दिया, कपड़ा बना दिया उसको बिल्कुल दंड की तरह, डंडे की तरह या कपड़े की तरह पूरा फैल गया, है ना। तमापतम था तमापतन तम सनगृह श्रृंगयो पदा समाक्रम मिन्यपात भूतले निष्पीड यामासे यथार्द्रमंबरम कृत्ता विषाणेन जघान सोपतन। खून की उल्टी करते हुए बुरी तरह से मलमूत्र त्यागते हुए निचोड़ा तो इधर से खून आया, उधर से मल मूत्र सब सब निकल गया, कपड़े का जितना भी था है ना मेरा सब निकल गया बाहर निचोड़ने से मेला कपड़ा बहुत मेला कपड़ा था ना सब निकल गया मैल उसका, मुंह से भी निकला मल मूत्र भी सब निकला है। और पांव पटकता हुआ और आंखें इधर उधर पलटता हुआ हरिश्चंद्र बड़ी पीड़ा के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया, वो इतना बलशाली था। अगर मान लीजिए भगवान उसको छाल भी देते ना तो नहीं मरता, और छाल करके ऊपर फेंक देते तो भी नहीं मरता, है ना। बल्कि और दुर्घटना होती, कहीं पर गिरता तो और नुकसान होता है ना, पटकते है ना। तो वहीं के वहीं उसको गिराया और उसकी जो है पिटाई कर दी, ऐसी बिल्कुल शांत कर दिया उसको अश्रृंगमन मूत्र सकृन समस्त्रजन क्षिपन क्षपन पादानन अवस्थित क्षण जगाम कृत्रम नृत्य रथ क्षय पुष्प किरंतो हरिमेडिरे सुराम। इस प्रकार अरिष्ट नामक वृषासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। एगम एवं ककुन्मिनम हत्वा स्तूयमानः द्विजातिभि विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनाम नयनोत्सवम्। तो क्या बताया गया है, एवं ककुन्मिनम हत्वा ककुद्मी का वध करके, ककुद्मी का मतलब जिसका ककुत था बहुत बड़ा यानी बैल, उसका मत करके स्तूयमान द्विजाति भी, और जो ब्राह्मण है वो स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की है। और विवेश गोष्ठम सबलो, सबलो का मतलब बल देव के सहित गोष्ठ में प्रविष्ट हुए। गोपी नाम नयनोत्सव, गोपियों के नयन का उत्सव है, गोपियों ने जो है अपने नेत्रों का उत्सव मनाया है ना भगवान कृष्ण। तात्पर्य लिखा है कि इस श्लोक में कृष्ण के भीतर आध्यात्मिक गुणों में जो सूक्ष्म विरोधाभास है उसका उदाहरण दिया गया है, कितना विरोधाभास है। इन चार पंक्तियों वाले श्लोक में एक ही साथ हम जान पाते हैं कि कृष्ण बलशाली दुष्ट असुर का वध किया। हाँ, पहली पंक्ति पहला पद है हत्वा, हत्या की उस बलशाली असुर की है, और फिर उनके केशोर सौंदर्य से उनकी सखियों को परम आनंद मिला, उनका जो सौंदर्य है जो सुंदर भी, इतना बल भी एक साथ नहीं होता ना किसी के अंदर, एक साथ सब गुण नहीं होते हैं, इतनी तो शक्ति है उनके अंदर है ना कि अरिष्टेश्वर का वध कर दिया, और फिर सौंदर्य इतना है कि गोपियों के नेत्रों को उत्सव प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कृष्ण वज्र की तरह कठोर हैं और फूल की तरह कोमल भी हैं। अरिष्टेश्वर कृष्ण को मारना चाहता था, अतः उसे गीले कपड़े की भांति पछाल कर मार डाला, किंतु गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं तो उन्होंने प्रेम का दान प्रदान किया। तो दोनों प्रकार के उनके अंदर गुण हैं। अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद जी कंस के पास आए। तो यहाँ तो ये है कि नारद जी कंस के पास आए। अरिष्टे नेते दैते कृष्णे न अद्भुत कर्मणाम कंसाया था है भगवान नारदो देव दर्शनाम। तो नारद जी अब कंस के पास जाते हैं और फिर सब बताते हैं कि कृष्ण जो है वसुदेव देव जी के पुत्र हैं, है? तुम्हारे शत्रु असली शत्रु तो कृष्ण ही है, जिनके द्वारा तुमको जो है मतलब मरना निश्चित हुआ है वो तो कृष्ण ही हैं। नारद जी कंस से बताते हैं, कंस की तरह बातें करते हैं, है ना, इस तरह से कि मैं ही तुम्हारा असली जासूस हूँ और मैं मुझे पता चला है और मैं तुमको जो है दे रहा हूँ सूचना, गुप्त सूचना दे रहा हूँ। इस तरह से है ना, और इस तरह से कंस ने खुद ही कृष्ण बलराम को बुलाया कि मैं हत्या करूँगा और उसकी हत्या हुई, है ना। तो नारद जी इस प्रकार से लीला में सहयोग करते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि अरिष्टासुर का वध जो भगवान ने किया है तो यही मतलब वृंदावन की भगवान की लीला है कि उसके बाद फिर मतलब जल्दी चले गए मथुरा, है ना। तो राधा कुंड का मतलब निर्माण आज के दिन हुआ और उसके बाद फिर केसी का और भीमासुर का भी वध हुआ, है ना, केसी का और भीमासुर का वध हुआ और फिर भगवान चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, है ना। तो 11 वर्ष की अवस्था में भगवान गए थे, है ना। तो आज के दिन भगवान जो है 11 वर्ष और कितने महीने हो गए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी ना, तो भाद्रपद के बाद आश्विन और कार्तिक दो महीने, तो 11 साल 2 महीने के हैं भगवान, 11 साल 2 महीने के हैं भगवान। और आगे चल करके ये बताया जाता है कि फाल्गुन कृष्ण द्वादशी को भगवान गए मथुरा अक्रूर के साथ, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि इसी द्वादशी को गए, कार्तिक की द्वादशी को गए, क्योंकि कंस बोल रहा है चतुर्दशी को यज्ञ है तुम लेके आओ, तो इसे तो ऐसा लगता है, लेकिन तात्पर्य में जो लिखा है जैसा भी हो जो भी हो, अगर फाल्गुन कृष्ण द्वादशी को भगवान गए तो फिर कृष्ण उस समय कितनी अवस्था के रहे होंगे, क्योंकि 11 साल 2 महीना तो ये हो गया, है ना, और फिर 4 महीना और हुआ है, हाँ तो 11 साल 6 महीना और 2 दिन 4 दिन द्वादशी, भगवान जो है 11 साल 6 महीना 4 दिन के जब थे तब मथुरा गए, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान कृष्ण की यो लीला है जो वृंदावन में मतलब भगवान ने मतलब एक प्रकार से अंतिम लीलाओं में से एक है, है ना। तो अब जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक निकाले हैं, बहुत ही मतलब दिव्य श्लोक हैं, तो इनको सुनिए। भोली भाली गोपियों ने कहा, हे बैल के हंता कृष्ण, कह रहे हैं हे बैल के हत्यारे, हैं अब तुम हमें मत छूना, अब तुम हमको मत छूना। यद्यपि अरिष्टासुर विकराल असुर था किंतु था तो बैल ही, अतः तुम्हें उसी तरह प्रायश्चित करना होगा जिस प्रकार वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था, किंतु तुम तीनों लोकों में प्रत्येक तीर्थ में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस प्रकार शुद्ध कर पाओगे। हंते मुग्धां घोरोऽसुरोऽयं अयि कृष्ण तदप्ययं गो वृत्रो यथा दुजिहात सति निष्कृतिः किं शुद्धेत भवान् त्रिभुवनस्थित तीर्थे कृच्छ्राम। तो गोपियां कहते मा अस्मान स्पृश अद्य, कि आज हमको मत छुओ तुम, भगवान गोपियां कहती हैं भगवान से कि तुम मत छुओ हमको, है वृषभ अर्दन, क्योंकि वृषभ के हत्यारे हो तुम वृषभ के हत्यारे हो। जब तक नहीं मरा था तब तक तो बड़ी इमरजेंसी थी और कृष्ण की शरण ली है, और जब मर गया तो अब जो है अब मत छुओ, है ना, है? तो ये हंसी मजाक है, तो भगवान भी जो है इसको पसंद करते हैं, तो कहते हैं अब तुम हमको नहीं छूना, तुम्हारे हाथ जो है उस पाप से दूषित हो गए हैं, तुमने बैल की हत्या की है। हंत मुग्धा घोरो सुरोजम, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अरे तुम बहुत मुग्ध हो, मतलब तुम बड़ी भोली हो, तुम लोग बहुत मंद बुद्धि। भगवान कहते हैं गोपियों से कि तुम बहुत मंद बुद्धि की हो। है वो तो घोर असुर था, ये तो घोर असुर है, है? ये थोड़ी बैल है, है? ये थोड़ी बैल का काम करता है, है? कि बैलगाड़ी में जो तो इसको ये तो बैल का काम नहीं करने वाला था, है? ये तो घोर असुर है, है? आई कृष्ण तदप हमको, ओहो कृष्ण, वो कहते हैं गोपियां, हे कृष्ण फिर भी तो ये गऊ के रूप में था। बैल या गऊ मतलब है तो गो जाति, वही गो जाति तो है, आखिर गो जाति तो है, है? तो भगवान बोले कि गो जाति मतलब इस गाय का रूप हो, एक बैल का रूप हो, है? तो भी ये तो असुर है। तो उन्होंने फिर उदाहरण दिया क्या, वृत्रो यथा दुज निष्कृति किम, जिस प्रकार से वृत्रासुर को इंद्र ने मारा था, असुर था, लेकिन चूंकि त्वष्टा का पुत्र था, त्वष्टा जो है ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण त्वष्टा ब्राह्मण ने उसको उत्पन्न किया था, तो ब्राह्मण था, तो आपको भी जो है इंद्र ने जैसे प्रायश्चित किया था, ब्रह्म हत्या लगी थी, तो तुमको भी लगी ब्रह्म हत्या। वृत्रासुर को मारने वाला तो ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पीछे आ रही थी, और शरीर धारण करके पीछे पीछे आ रही थी, है? तो ऐसे तो कृष्ण को थोड़ी लग रही कोई ब्रह्म हत्या, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इंद्र ने जैसे वृत्रासुर का वध किया था तो ब्रह्म हत्या लगी थी। तो वास्तव में वृत्रासुर तो ब्राह्मण थे, क्योंकि उनकी चेतना बहुत शुद्ध थी, बहुत दिव्य थी, बल्कि वो अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंद्र की हत्या नहीं की, जबकि इंद्र को मार सकते थे वृत्रासुर, है? इंद्र की हत्या नहीं की, और इंद्र के हाथ से वज्र छूट के गिर गया, तो वृत्रासुर ने कहा कि वज्र उठाओ, वज्र ऐसा नहीं है, जैसे तुमने गदा का प्रहार किया तो मैंने गदा पकड़ करके तुम्हारे हाथी को मार दियो और गिरा दिया हाथी को और तुमको गिरा दिया, तो इस तरह से वज्र विफल नहीं होगा, वज्र का प्रयोग करो तुम, तो इसमें भगवान की शक्ति है वज्र। तो वृत्रासुर खुद ही बताता है इंद्र को, तो वृत्रासुर बहुत बड़े भक्त थे, और वो तो बैकुंठ जाने हैं कि उतावली में थे कि मैं जल्दी शरीर छोड़ूं तो वैकुंठ जाऊं, तो वृत्रासुर तो मतलब इस तरह से थे, है ना? और फिर इंद्र जो है जब वृत्रासुर के ऊपर प्रहार किया, तो वृत्रासुर ने क्या किया, इंद्र को हाथी के सहित खा लिया और पेट में पहुंच गए, इंद्र पेट में पहुंच गए वृत्रासुर के, है ना? लेकिन फिर इंद्र ने क्या किया, वृत्रासुर का वज्र के द्वारा पेट फाड़ करके और हाथी के सहित निकल आए। उस समय वृत्रासुर जो है मतलब भगवान के ध्यान में लीन थे, क्योंकि अपना शरीर छोड़ना है तो भगवान के ध्यान में लीन थे। तो उस समय इंद्र ने जो है जब वज्र से वृत्रासुर की गर्दन काटी, तो वो मतलब ब्राह्मण हत्या उस समय ब्राह्मण हत्या लगी, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है, वृत्रासुर का पेट फाड़ के अंदर निकल आए, और अब जो है वो भगवान के ध्यान में वो तल्लीन है। उस समय जो है वृत्रासुर का उन्होंने इंद्र ने जब वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी, तो वो तो अलग चीज है, हाँ, कि चेतना ही उनकी मतलब शुद्ध भक्त की चेतना में थे वृत्रासुर, लेकिन ये तो अरिष्टासुर, ये तो जो है असुर की चेतना में था। लेकिन गोपियां मतलब एक उदाहरण देती हैं कि इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को मारा था तो असुर था, लेकिन चूंकि वो जो है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो उसको जो है मतलब माना गया, ब्रह्म हत्या लगी। तो इसी प्रकार से ये भी जो है गऊओं के परिवार में या गऊ के बैल के रूप में था, तो आपको गो हत्या लगी है, ना? तो फिर भगवान क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, निष्कृति किम, तो क्या निष्कृति है, क्या प्रायश्चित है, अगर मुझे तुम मानते हो कि मुझे गो हत्या लगी है तो इसका प्रायश्चित बताओ, तो मैं क्या प्रायश्चित करूं। शुद्धेर भगवान त्रिभुवन स्थित तीर्थ कृत, तो आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं सब जगह जाओ स्नान करो। अब पृथ्वी में ही कितने तीर्थ हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ तो पृथ्वी में है, और एक एक तीर्थ में जाओ स्नान करो कितना समय लग जाएगा, और तीनों लोकों में तो सब मिलाकर के 68 करोड़ तीर्थ हैं, तो एक एक तीर्थ में जाओ स्नान करो करोड़ों साल लग जाएंगे इसमें, तो है ना। तो किसने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा, मैं संघ तीर्थनों को यहीं ले आता हूं और स्नान कर ले, एक साथ में स्नान भी कर लूंगा, है ना। 68 crores in 1, 68 crore तीर्थों को ला करके इकट्ठा करके पानी और एक बार स्नान करके डुबकी लगा करके तैयार हो जाऊंगा। शॉर्टकट शॉर्टकट देखो, ये कहकर भगवान मुकुंद ने अपने एड़ी से भूमि पर प्रहार किया, अपने एड़ी से प्रहार किया। क्यों? गड्ढा बनाने के लिए। गड्ढा बनाने में भी उनको कोई परेशान नहीं रखता है भगवान को, है ना। किम पर्यटा भुवनान अधुन सर्वाम आनीय तीर्थ व्यतिथि करवाणी तासु स्नानम विलोकता व्यतीत मुकुंद तत्र कृतवान बत पार्षण घातम। किम पर्यटा भुवनानी, भगवान क्या बोले, है ना, कि मैं क्यों पर्यटन करूंगा भुवनानी, यानी सब लोकों में, अलग अलग लोकों में मैं क्यों पर्यटन करूंगा, है अधुन सर्वा आनीय तीर्थ है, जितने भी तीर्थ हैं अभी मैं बुला लेता हूं यहां पर सभी तीर्थों में भी यही बुला लेता हूं। तीर्थ वितिथि करवाणितासु स्नानम विलोक्यत, और स्नान भी कर लेता हूं अभी। देखो कितना कठिन से कठिन कार्य को कितना सरल बनाया भगवान ने, है ना। ये भगवान का कार्य है, कितना कठिन कार्य और कितना सरल बनाया, इससे सरल कुछ काम हो ही नहीं सकता, है? और इससे कठिन कार्य कोई हो नहीं सकता, इससे भी कठिन कार्य कोई हो सकता है कि तीनों लोगों के 68 करोड़ तीर्थों में जाकर के स्नान करो, इससे कठिन कार्य और कोई हो सकता है, और कृष्ण ने क्या किया, सब तीर्थों को इकट्ठा बुला करके और जल इकट्ठा करके एक बार स्नान कर लिया और बोले हो गया मेरा, इससे सरल कार्य कोई हो सकता है, है? कठिनतम को जो है सरलतम बनाना, ये काम किसका है, कृष्ण का है। तो एड़ी से प्रहार किया, है ना। तो फिर ये रहा भोगवती का जल जो पाताल खंड से आ रहा है। अब हे तीर्थ हो, आप सब यहां आ जाइए। जब भगवान ने शब्द कहे, सारे तीर्थ यहां आ गए और उनके सामने प्रकट हुए, तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया, पाताल तो जले में दम किल भोगे बत्या। तो सबसे पहले जल निकला, भगवान ने एड़ी से प्रहार किया, पैर की एड़ी से, तो सबसे नीचे जो जल का स्रोत निकला, पानी निकलने लगा, तो वो कौन सा पानी था, पाताल में भोगवती, वही गंगा जी हैं, त्रिपदगामी कही जाती हैं, स्वर्ग में मंदाकिनी और पृथ्वी में भागीरथी और पाताल में भोगवती, है ना। तो भोगवती का जल सबसे पहले आया, पाताल तो जल में दम किल भोगे बत्या, ये पाताल की भोगवती का जल है। भगवान ने कहा, देखो अभी भगवान ने दिखाया, ये पाताल से भोगवती का जल है। आयातम अत्र निखिला आपी तीर्थ संगा, अब भगवान क्या बोले, और जितने भी तीर्थ हैं सब आइए, भगवान की आवाज अपने आप पहुंच गई उधर, है ना, मोबाइल, ऐसा मोबाइल है, कैसा मोबाइल है, सब जगह पहुंच गया भगवान का, आइए सब तीर्थ, हाँ तीनों लोकों में तीर्थों को जो है आवाज में आदेश मिल गया, है ना। आगच्छत इति भगवत वचसा त एत्य, तो भगवान के वचन से वो आ गए, तत्रैव रेजु अथ कृष्ण वाच गोपी, तो सब पहुंच गए और कृष्ण गोपियों से कहा, अब कृष्ण गोपियों से कहा, क्या कहा, समस्त तीर्थों को देखो। गोपी ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो हम तो नहीं देख रहे, हम तो नहीं देख रहे, है ना। तब तीर्थ ही बोले अपने मुख से, मैं लवण सागर हूं, मूर्त रूप में मूर्ति, मैं लवण सागर हूं, मैं क्षीर सागर हूं, मैं अमर दीर्घ का हूं, अमर दीर्घ का मतलब अमृतसर, अमृत सरोवर, है ना, अमृत का सरोवर भी कहीं पर है, या ये हो सकता है अमृतसर, अमृत सरोवर हूं। तीर्थान्य पश्चद हरेर वचसा तवेवम नैव प्रतिमेतिदा अध तीर्थ वर्या प्रोचो कृतांजलि पुटा लवणाधि रश्मि क्षीराधि रश्मि सुनता अमर दीर्घ कास्मी। तो भगवान कहते हैं तीर्थानि पश्चत, हाँ कि देखो इन सब तीर्थों को नैवे प्रतिमेति। तो गोपियों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है। तो फिर तीर्थ वर्या जो श्रेष्ठ तीर्थ हैं वो स्वयं प्रोचुहु कृतांजलि पुटा अपने हाथों को जो है जोड़ करके स्वयं बोले। कैसे बोले? लवणाध्य अस्मि मैं लवण समुद्र हूँ, क्षीराब्धि रश्मि मैं क्षीर समुद्र हूँ, सुनो तो सुनो सुनो अमर दीर्घ का मैं अमृत सरोवर हूँ, मैं सोण नद हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्र पर्णी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, और हम गोदावरी यमुना रेवा नदियाँ हैं और प्रयाग में स्थित नदियों के संगम हूँ। जरा हमारे जल को देखो, पानी भी डाल रहे हैं सत्य जो है अपना जल भी डाल रहे हैं। सोड़ोपि सिंधुरामस्मि भवामि ताम्र पर्णे च पुष्करमहं च सरस्वती च गोदावरी रविसुता सरयुः प्रयागो रेवास्मि पश्यत जलम कुरुते प्रतीतम। तो वो बोल रहे हैं, तीर्थ बोल रहे हैं कि विश्वास करो मैं सोड़ नद हूँ, सिंधु नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, तो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, है ना। तो पुरुष कौन कौन है? जो लवण समुद्र पुरुष के रूप में है, क्षीर समुद्र पुरुष के रूप में है, और अमर दीर्घ का अमृत सरोवर पुरुष के रूप में है, है ना। सोण नद पुरुष के रूप में है, और सिंधु नदी है स्त्री के रूप में है, ताम्रपर्णी नदी है स्त्री के रूप में है, पुष्कर तीर्थ पुरुष पुरुष के रूप में है, सरस्वती नदी स्त्री के रूप में है, और हम हैं गोदावरी यमुना और रेवा नदियां स्त्रियां हैं, है ना। और प्रयाग मैं प्रयाग हूं, गोदावरी रविसुता सरयू प्रयागो प्रयाग तीर्थ पुरुष है, तीर्थराज तीर्थों का राजा प्रयाग है। पश्यत जलम कुरुते हमारे जल को देखो और विश्वास करो, देखो जल भी तो हम दे रहे हैं और सब जो है तीर्थ बोल रहे हैं। स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद भगवान हरि एकदम अखड़ बन गए, अखड़ बन गए स्नान करने के बाद भगवान अखड़ बन गए कि देखो भगवान अखड़ बन गए, अखड़ बन गए, और उन्होंने कहा मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक सरोवर का निर्माण कर दिया, किंतु तुमने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक भी कार्य नहीं किया है। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने सखियों से कहा स्नात्वा ततो हरिरति प्रतिगल्भ एवं शुद्धा स्वरूप स्वरूप कर्वम स्थित सर्व तीर्थम जिसमाभिरात्म जनुषी है कृतो न धर्मः कोपि छतावत सखीर निज गाद राधा। स्नात्वा हरि स्नान करके हरि अति प्रजगल्भ एव, प्रजगल्भ है माने बहुत अकल में अकल करके चलने लगे भगवान, है ना। जैसे लगता है कि भगवान घमंड कर रहे हैं, उनकी तो विनम्रता है, भगवान कहते हैं कि मैं शुद्ध हो गया, तो ये वास्तव में उनकी विनम्रता है कि वो कह रहे हैं मैं शुद्ध हो गया, तो भगवान तो अशुद्ध होते नहीं, है ना। तो भगवान लगता है कि भाई भगवान घमंड कर रहे हैं कि देखो मैं शुद्ध हो गया हूँ, नहीं इस घमंड में भी उनकी विनम्रता है, है ना, क्योंकि वे पवित्राणाम पवित्रम पवित्रम ही पवित्र है, है ना। वो कहाँ अपवित्र, अपने को अपवित्र मान रहे हैं भगवान है? और फिर अपने को पवित्र मान रहे हैं, तो उनकी तो विनम्रता है ना। लेकिन भगवान जैसे दिखा रहे हैं जैसे कि वो घमंड कर रहे हों कि मैं देखो पवित्र हो गया हूँ और मैंने क्या किया है, शुद्धा सरोप्य कर्मम सर्व स्थित सर्व जिसमें सब तीर्थ स्थित हों, मैंने एक सरोवर का निर्माण किया है, जिसमां भी आत्मजनुषी है कृतो न धर्मा, आप लोगों ने तो जो है ऐसा कोई धर्म नहीं किया है जो जिस पृथ्वी में मतलब कोई माना जाए भाई बहुत विशेष, तो तुमने तो आप लोगों ने तो कोई काम नहीं किया, मैंने तो किया है। तो राधा रानी ने सखियों से कहा, क्या कहा, मैं इसे भी सुंदर एक सरोवर बनाऊंगी, अतः तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने देखा अरिष्टासुर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बन गया था। अरिष्टासुर ने जो है कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए जमीन खोदी थी ना, तो राधा रानी ने जो है इसका फायदा उठाया क्योंकि पुरुषार्थ तो पुरुष में होता है, स्त्री में थोड़ी पुरुषार्थ होता है, है ना। तो फायदा क्या उठाया, अरिष्टासुर ने पहले से खुर से अपना जब कृष्ण को लक्ष्य बनाया था ना, अच्छा यही लड़का है ना, शत्रु यही है ना, शत्रु समझ करके और जमीन को जो है वो खोद रहा था, गड्ढा बना रहा था, तो वो गड्ढा पहले से बन गया था तो बड़ा अच्छा फायदा मिल गया राधा रानी ने, उसका फायदा उठाया है। तो फिर क्या किया उसमें जो है, कार्यम मयाप्यति मनोहर कुंडमेकम तस्माद् तद्धुमिति तन्वचनेन ताभि श्री कृष्ण कुंड तट पश्चिम दृश्य मंदो गर्भा गरता कृतो वृषभ दैत्य खोरेर बेलोकी। जब देखा तो उसमें ही अपना कुछ काम कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा कि भाई ये हमारा है, अपना नाम हो जाएगा शॉर्टकट अच्छा है ना राधा रानी है? तो अपने नाम का सरोवर उन्होंने उसको बना लिया, उसमें थोड़ा काम कर दिया और अंदर अंदर उसके अंदर है ना थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी और हो गया भाई, भाई ये तो राधा रानी ने बनाया है ना। वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को कुरेदना शुरू किया, तो वो गीली मिट्टी हो गई थी है? तो इस तरह एक घंटे के थोड़े से समय में दिव्य कुंड प्रकट हो गया। उनके द्वारा बनाए गए सरोवर को देखकर कृष्ण चकित रह गए। तत्रांतर मृदुल गोल तति प्रतिस्व हस्तोधृता अनति दूर गता विहा विधाये दिव्यम सरा प्रकृतम घटिदा घटिका द्वयेन ताभिर्विलोक्य सरसम स्मरते स्म कृष्णः। घटिका द्वयम्, दो घड़ी में राधा रानी की सखियों ने उसमें काम किया। दो घड़ी का मतलब क्या, 48 मिनट, 48 मिनट काम किया है ना, और तैयार कर दिया अपना सरोवर है ना। तो उस राधा कुंड के अंदर जब उसको मतलब खाली किया जाता है तो कंगन कुंड मिलता है, कंगन कुंड भी है ना। तो 2006 में जब उसका सफाई हो रही थी ना, तो हमने देखा था, दर्शन किया था, तो कंगन कुंड जो है मतलब कुंड के, राधा कुंड के बीच में है, तो पूरा राधा कुंड खाली किया है ना, तो इतना मोटा पाइप लगा करके खाली कर रहे हैं, लेकिन कंगन कुंड खाली नहीं हुआ, क्योंकि अब सोचो 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई है उसमें लगातार है ना, तो खाली हो नहीं सकता है। तो राधा कुंड जो है वो लगातार पानी निकल रहा है, लेकिन वो जितना पानी है वो उसमें जा रहा है, कंगन कुंड में जा रहा है, तो खाली हो नहीं, हुआ ही नहीं, वो भरा ही जा रहा है। और देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई उसमें है, लेकिन तब शुरू होती है जब थोड़ा सा लेवल नीचे होता है, और जब उस लेवल में आ जाता है तो अपने आप सप्लाई बंद हो जाती है, तो बहुत खतरा भी है आप सोचिए, अगर मानो सप्लाई बंद ना हो तो क्या हो गया, पूरी पृथ्वी डुबा देगा, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। लेकिन अपने आप सप्लाई बंद हो जाती है तीर्थों की, कितनी मतलब पूर्ण व्यवस्था है भगवान की, सोचिए। और हमने देखा अपनी आंखों से देखा कि जो है छोटे छोटे धाराएं निकल रही, थोड़ी पतली पतली धाराएं निकल रही है, कितनी धाराएं निकल रही है मिट्टी से, मिट्टी है बिल्कुल मतलब गीली मिट्टी है वहां की है ना, लेकिन धाराएं निकल रही है, पतली पतली धाराएं निकल रही है जो कि मिक्स नहीं हो रही है, सोचिए 68 करोड़ तीर्थ ना, आश्चर्य है अपनी आंखों से। तो यहां पर मैं पढ़ रहा था ये, हाँ तो उन्होंने जो है मतलब 48 मिनट में इतना काम कर लिया। कृष्ण को तो 1 सेकंड लगा था केवल अपनी यही मारी जमीन में और बना दिया, नया गड्ढा बना दिया। राधा रानी सखियां जो है कंगन, हाथ के कंगन से जो है उन्होंने मिट्टी जो है निकाली है ना, इसे कंगन को कहते हैं। कुछ अपने हाथों से भी निकाला है, उस कुरेदा खोदने के लिए कंगन का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर तो कुछ और फावड़ा वगैरह कुछ था ही नहीं ना मिट्टी खोदने के लिए कंगन से जो है निकाली मिट्टी है ना। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि हे कमल नेत्र वाली आगे बढ़ो, तुम्हारी सखियां मेरे कुंड से जल लेकर के भर लो। भगवान कृष्ण बोले कि पानी तो अब नहीं है, पानी तो नहीं है तुम्हारे कुंड में, तो मेरे कुंड से पानी ले लो, अपना कुंड भर लो, है ना। राधन रतन ना 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 ना, तुम्हारे कुंड का जो जल है वो गोवध के पाप से दूषित है, गोवध के पाप से दूषित है। प्रोचे च तीर्थ स्थलिल परिपूर्य तन मत कुंडता सरस साक्षी सहालिभिस्तम राधा तदा ननन नेति जगादि यस्मात् तत्कुंड नीरमम नीरमुरु गोवध पातकाक्तम। सब हंसी मजाक है। तुम्हारे कुंड में जो है गोवध है, क्योंकि तुमने स्नान किया है तो गोवध का जो है जो पाप है तो धो लिया, तो वो तो उसमें गोवध उस पानी में आ गया है, तुम शुद्ध हो गए, लेकिन पानी जो है पानी में आ गया है वो। जैसे गंदा कपड़ा आपने धोया पानी में, तो पानी में सब मैल चला गया, कपड़ा साफ कर लिया तुमने, इस तरह से तुमने जो है अपने वो शुद्ध किया है, लेकिन पानी में तो आ गया वो पाप। राधा रानी कहते हैं तुम्हारे कुंड के जल नहीं रहेंगे, इस तरह से कह रहे हैं। और मैं क्या करूंगी, असंख्य सखियों से जो है करोड़ों घड़ों में भराकर मानसी गंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगवाऊंगी, इस तरह मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी, इसे संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध बनाऊंगी। आहृत्य पुण्य सलिलम शत कोटि कुंभ है सख्युर्वदेन सह मानस जानवीता ए तत्सराश मधुना परिपूरयामी तेन कीर्ति मधुलाम तनवानी लोके। क्या करें, शत कोटि कुंभ है, 100 करोड़ घड़ों के द्वारा। आप सोचिए कितनी गोपियां हैं राधा रानी के साथ में, 100 करोड़ घट जो है मैं क्या करूंगी, मानसी गंगा का मंगा लूंगी है। और सखी अर्बुदेन है, अर्बुद सखियां हैं मेरी, अर्बुद 100 करोड़ सखियां हैं राधा रानी के साथ, 100 करोड़ सखियां हैं, और एक एक सखी जो है एक एक लाएगी तो भर जाएगा, क्यों नहीं भरेगा, 100 करोड़ घड़ा पानी। और क्या परिश्रम है इसमें, कितना परिश्रम है, एक एक घड़ा जो है लाएगी और भर दूंगी मैं, राधा रानी कहती हैं। और इससे अपने कुंड को जो है प्रसिद्ध बना दूंगी। तब कृष्ण ने उस देवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंगी था, मतलब एक पुरुष बन गया, सब तीर्थ मिलकर के एक पुरुष बन गया है ना, तो उसको जो है भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि अब तुम जो है प्रार्थना करो राधा रानी से, है ना, इशारा किया। और कृष्ण का इशारा मतलब आदेश, कृष्ण का आदेश, उनको कोई आवश्यकता नहीं कि राधा कौन भरे या ना भरे, कृष्ण ने आदेश किया और कृष्ण के आदेश से राधा रानी से वो जो है स्वयं प्रार्थना करते हैं, है ना। और कृष्ण कुंड से निकल करके, वो कृष्ण कुंड से पानी से निकल करके वो जो है राधा रानी के चरणों में उसने प्रार्थना की और राधा रानी को नमस्कार किया, फिर दोनों हाथ जोड़े आंखों से आंसू बहाते हुए स्तुति करने प्रारंभ की, आंसू बह रहे हैं, है ना। कृष्णेंगिते न सह सत्य समस्त तीर्थ सख्य तदीय सरसो धृत दिव्य मूर्ति तुष्टाव तत्र विस्वानु सुताम प्रणम भक्त्या कृतांजलि पुटा स्रवदस्त्र धारः। कृष्णेंगिते न सहसा एत्य, कृष्ण के सहारे से सहसा आकर के समस्त तीर्थ सख्य तदीय सरसो धृत दिव्य मूर्ति, जो मूर्ति दिव्य रूप धारण करके है ना उसी सरोवर से निकल करके तो स्टाव तत्र विषभानु सुताम प्रणाम में संतुष्ट करने लगा, राधा रानी को प्रणाम करके भक्त्या कृतांजलि पुटा सर्वत अश्रु धारा, तो उसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और हाथ जोड़े हैं, उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और राधा रानी की स्तुति की। देवी समस्त शास्त्रों के वेत्ता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते हैं, शिव जी और लक्ष्मी जी भी नहीं जान सकते आपकी कीर्ति को, समस्त मनुष्यों के जो स्वामी हैं केवल कृष्ण ही आपकी कीर्ति को समझ सकते हैं, जब आप थक करके अपने पसीनों को धो देती हैं तो अपने को कृतित्व मानते हैं। देवी तो दिये महिमानम अवैति सर्वम शास्त्रार्थ विन्न च विधिर्न हरो न लक्ष्मी किन्तु एक एव पुरुषार्थ शिरोमणि स्तन प्रस्वेदमार्जन परहा स्वयं एव कृष्णः। तो क्या कह रहे हैं कि आपकी महिमा को जो है समस्त शास्त्रों को जानने वाले भी नहीं जानते हैं आपकी महिमा को है? ना ब्रह्मा जी जानते हैं, ना लक्ष्मी जानते हैं और ना शिव जी जानते हैं आपकी महिमा को। केवल एकमात्र कृष्ण ही पुरुषार्थ शिरोमणि है। जो पुरुषार्थ के शिरोमणि हैं एकमात्र कृष्ण ही आपकी महिमा जान सकते हैं है? और वे स्वयं कृष्ण जो है प्रस्वेद मार्जन पर आपके पसीने को जो है कृष्ण आपके पसीने को धोते हैं तो इसमें अपने को कृतकृत समझते हैं कृष्ण है। मतलब आपकी यही महिमा है प्रस्वेद मार्जन पर आपके पसीनों को जो है कृष्ण अगर हटाते हैं या साफ करते हैं पोछते हैं। मार्जन माने पोछना, तो राधा रानी के पसीने को भगवान जो है अपने पीताम्बर से पोछते हैं है ना। तो इसको कहते हैं प्रस्वेद मार्जन पर कि आपके जो है मुख में जब पसीना आता है पसीने बुन है और कृष्ण जो है अपने पीताम्बर से पोछते हैं है? तो कृष्ण जो है मतलब इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। कृष्ण का सर्वोच्च आनंद ये है ना। तो आपकी महिमा देखो क्या महिमा है आपकी है ना। ये कौन कह रहे हैं? हाँ समस्त तीर्थों का जो है जो प्रतिनिधि है वो बोल रहा है। वे आपके चरण कमलों को सदैव अमृतमय यावक से लेपित करते हैं। यावक मतलब महावर यावक से और घुंघरों से सजाते हैं नूपुर आपके चरणों सजाते हैं है ना। ये महिमा है आपकी। आपके चरण कमलों की अंगुलियों के अग्र भागों को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं, अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने आ गए हैं जिसे उन्होंने अपनी एड़ी के एक प्रहार से उत्पन्न कर दिया था। किंतु यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो अपनी कृपा दृष्टि डालें तो हमारी इच्छा है तो हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अब इच्छा नहीं बताई कि हमारी इच्छा क्या है, ये हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है यदि आप प्रसन्न होकर के अपनी कृपा दृष्टि डालें। चारुया वक्र से अनुभव पदाब्दम आरजनोपुर महो निधाति नित्यम प्राप्य तो दिए ने नाम जे तटय प्रसादम स्वमन्यते परम धन्य तमम प्रहृष्यन तस्याग एव सहसा वयमा जगाम तत्पाष्ण घाट कृत कुंड परे वसाम तम चेत प्रसीदसि करोषि कृपा कटाक्षम तरहेव तरसि वटिभि फलितो भवेन्नः। जिस चारु यावक रसेन भव पदाब्जम आपके चरण कमलों को जो है सुंदर महावर के द्वारा आपको जो है रंगते हैं कृष्ण है। और नूपुरम अहो और रोज आपके चरणों में नूपुर पहनाते हैं है? कृष्ण प्राप्य तो दी नयनाब्द तटे प्रसादम और आपकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करते हैं कृष्ण है? स्वमन्यते परम धन्य तमम तब कृष्ण अपने को परम धन्य मानते हैं आपको प्रसन्न करके आपकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करके कृष्ण अपने को परम धन्य मानते हैं। तस्याज्ञा एव सहसा वयम् आजगम उनकी आज्ञा से हम अचानक यहाँ पर आ गए हैं। उनकी आज्ञा थी तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तत्पाष्ण घाट कृत कुंड वरे वसामा और उनके एड़ी के प्रहार से जो कुंड बना है उसमें हम निवास करते हैं। अपना परिचय दे रहे हैं कि हम सब कितने हैं 68 करोड़ व्यक्ति हैं। हम अचानक आ गए हैं उनके बुलाने से और कहाँ पर वास करते हैं उनके एड़ी से बने हुए गड्ढे में वास करते हैं। तुम चेत प्रसीदसी करो सी कृपा कटाक्षम यदि आप प्रसन्न हो और कृपा अपनी कृपा की कटाक्ष अगर हमारे ऊपर डालें कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर डालें तर हे वेतर से वेटपी फलितो भविन्ना तो हमारी इच्छा रूपी जो फल है वो निकल सकता है ना। इच्छा का फल मिल सकता है। अब इच्छा क्या है ये तो पता नहीं, अभी तो बताएगी हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। समस्त तीर्थों की स्तुति सुनकर श्री राधा प्रसन्न हो गई। बोले तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुनाओ। तब उन्होंने स्पष्ट कहा हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सकें, यही वरदान हम चाहते हैं। श्रुत्वा स्तुतिम निखिल तीर्थ गणश चतुष्टाम प्राहस्म तरसमय भेद यतेति अनाथा या मैं तो दीय सरसीम सफला भवाम इत्येव नो वरेति प्रकटम तदोचुः श्रुत्वा स्तुतिम निखिल तीर्थ गण से तुष्टा। तो समस्त तीर्थों की स्तुति सुन करके तुष्टा, तुष्टा मतलब राधा रानी, प्रा है मतलब बोली, तरसमयी वेदय इति राधा, वेदयत इति राधा कि ठीक है बोलो आपकी क्या इच्छा है। या मैं तो दीय सरसीम सफला भवाम, अगर आपके सरोवर में हम आ जाएं तो हम हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इत्येव नो वर इति प्रकटम ददोजु, तो उन्होंने ये वरदान प्रकट दे दिया, प्रकट रूप से दे दिया। तब अपने प्रीतम को अपनी आंखों के कोरों से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कृपया आप लोग आइए। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गईं और आनंद मग्न हो गईं। अब वो कहां प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है जो लाना था वहां से, है ना। वास्तव में परिश्रम तो होता क्योंकि एक एक घड़ा भी लाना तो गोवर्धन पर्वत ऊंचा था उस समय, काफी ऊंचा था, है ना। अभी तो 88 फुट से भी कम है गोवर्धन पर्वत, है ना, क्योंकि एक एक तिल जो है रोज कम हो रहा है। एक तिल को अगर आधा मिलीमीटर में अगर मान लें तो समझो कि 2000 दिन में 1 मीटर कम हो रहा है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 2000 दिन में 1 मीटर कम हो रही है, और 2000 दिन का मतलब कितने साल हुए, 7 साल नहीं 6 साल, हाँ 2000 दिन 6 से भी कम होगा, 365-360 से भाग देंगे, हैं? हाँ 6 से भी कम होगा। तो मतलब 6 समझ लो, तो 6 साल में 1 मीटर कम हो रहा है। अब 5000 साल पहले अब सोचिए कितनी ऊंचाई थी गोवर्धन की, आप निकाल सकते हैं 6 साल में 1 मीटर, तो 5000 साल में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर करीब समझ लो, तो 1 किलोमीटर ऊंचा गोवर्धन, और वहां मानसी गंगा, तो इतनी ऊंचाई में चढ़ना उतरना तो परिश्रम होगा कि नहीं होगा। एक एक गोपी भी अगर एक एक घड़ा लेके आएगी तो कितना परिश्रम होगा। तो भगवान नहीं चाहते थे कि इनको परिश्रम हो, है ना, तो भगवान ने जो है मतलब इनको इशारा किया और सब तीर्थ उनको उससे प्रार्थना करने लगे। तो सब सखियां भी राधा रानी के निर्णय को मान गई, आनंद मग्न हो गई। निस्संदेह समस्त चर चर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। आगच्छते ते ब्रजभानु सुतास्मितास्याम प्रोवाच कांद वदनाम जय वदनाम जय धृताक्षिकोण सख्योपि तत्र कृते सम्मित यः सुखाब्दो मग्ना वीरजुरखिला स्थिर जंगमाश्चा। आगच्छत इति ब्रजभानु सुता स्मितास्या प्रोवाच, राधारण कहा कि ठीक है आ जाइए। आगच्छत है और कांत वदनाब्ज धृताक्षी कोणा, अक्षी कोण मतलब नयन का कोण जो है, कोण से तिरछी नजरों से कृष्ण की तरफ देख रहे हैं राधा रानी है, और जो है सख्योपि तत्र कृत सम्मतया सुखाब्धो, तो सखियां भी जो है उनकी सम्मति से उनकी वो भी जो है सम्मत हो गई राधा रानी के। सुखाब्धो मग्ना और सुख के समुद्र में डूब गई। विरेजु रखिला स्थिर जंगम आचा, स्थिर जंगम समस्त जो है प्राणी प्रसन्न हो गए। श्रीमती राधा रानी की कृपा पाकर श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र तीर्थों ने सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को भर दिया। तो फिर पानी कैसे आया, ऐसे उछल के नहीं आया, तोड़ दिया तट को, जो बीच में जो थी दीवार उसको तोड़ करके वो जो है मतलब प्रवेश कर गया, है ना। प्राप्य प्रसाद मत थे ब्रजभानु जाया श्री कृष्ण कुंड गत तीर्थ वरा प्रसह भित्त्येव भित्तिम अतिवेगत एव राधा कुंडम मधु सलिल परिपूर्णमेव। अब वो कुंड जो है मतलब वो किस तरह से तोड़ा उसने, ऊपर से नहीं तोड़ा, ऊपर का जो है मतलब जमीन बनी रही लेकिन जो लेवल था ना पानी का उस लेवल से जो है उसने तोड़ करके राधा कुंड और श्याम कुंड एक हो गए, है ना। उस जो पानी का लेवल है उस लेवल में जो है उसको तोड़ करके वो एक हो गए, है ना। तब भगवान हरि बोले, हे राधा ये तुम्हारा एक कुंड सारे विश्व मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो जाए। भगवान कह रहे हैं मेरे कुंड से ज्यादा विख्यात तुम्हारा कुंड हो जाए। भगवान कह रहे हैं मैं यहाँ पर नित्य स्नान करने और जल विहार करने आऊंगा, निस्संदेह ये सरोवर तुम्हारे समान मुझे प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं प्रोचे हरि प्रीतमे तब कुंड मे तन मत कुंड तो महिमा दिखे मस्तु लोके अत्रैव मे सलिल केली रिहेव नित्यम स्नानम यथा तुमसी तन मध्यमम सरो मे। प्रोचे हरि तो भगवान बोले प्रीतमे हे प्रीतमा तब कुंड मे तन तुम्हारा जो कुंड है मत कुंड तो महिमा अधिकम अस्तु लोके इस लोक में मेरे कुंड से ज्यादा महिमा तुम्हारे कुंड की होवे अस्तु। भगवान वरदान दे रहे हैं राधा रानी को अत्रैव मे सलिल केली रिहेव नित्यम तो मेरे द्वारा जल विहार रोज किया जाएगा, मतलब मैं तुम्हारे कुंड में रोज जल विहार करूंगा। स्नानम यथा तुमसी तदीमम सरोमे तो जिस प्रकार से तुम हो तद्वत इमम सरोमे जिस प्रकार से तुम हो मुझे मेरी प्रिया उसी प्रकार से तुम्हारा कुंड भी मुझे प्रिय है। राधारानी ने उत्तर दिया मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आऊंगी। राधारानी कहते मैं आपके कुंड में स्नान करने आऊंगी भले ही आप सैकड़ों अरिष्टासुर का वध क्यों ना करें। पहले कहा था ना कि आपने जो है पाप आपके पाप से जो है वो कुंड जो है वो हो गया है दूषित हो गया है तो भाई आप सैकड़ों अरिष्टासुर का वध क्यों ना करें मैं आपके कुंड में स्नान करने आऊंगी। भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में जिस किसी को उत्कंठ भक्ति होगी और जो भी इसमें स्नान करेगा इसके पास निवास करेगा निश्चय ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। राधा ब्रवीद अहम अपी स्वसखी भी रहते स्नाश्यामी अरिष्ट सतमर्दन मस्तु तस्य अरिष्ट मर्दन सरस्वरु भक्ति स्नायान वसेन मम सैव महाप्रियोस्तु। उस रात्रि कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया। अब वो रात्रि जो है क्या किया भगवान ने रास नृत्य किया है ना जिससे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण मेघ के समान थे, श्रीमती राधारानी बिजली की चमक जैसी थी है? इस तरह उनकी दैवीय महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। रासोत्सवम प्रकुरुते स्मै च तत्र रात्रौ कृष्णाम्बुदा कृतम हार सहर्ष वर्षः सीराधिका प्रवर विद्युदलंकृत श्री त्रैलोक्य मध्य वितति कृत दिव्य कीर्ति। इस प्रकार से और भी कई बातें थीं लेकिन अब समय ज्यादा हो गया है तो आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो या प्रश्न हो प्रद्युम प्रिया कुछ सुनाएंगे।
हरे कृष्णा। तो आज राधा कुंड आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में एक छोटी सी घटना है जो मैं सुनाना चाहूँगा। ये असित गोविंद प्रभु जो लिख रहे हैं उसी में से एक है हैदराबाद में राधा कुंड आविर्भाव तिथि। तो ये 2 साल पहले की घटना है। तो आज के दिन विशेष पवित्र आज का जो दिन है वो विशेष पवित्र है बहुलाष्टमी का था वो लिख रहे हैं। और इस दिन राधा कुंड आविर्भाव दिवस के अवसर पर भक्त लोग राधा कुंड चले गए और प्रद्युम्न प्रिय ने प्रभु जी से कहा आज मंदिर में थोड़े से लोगों को छोड़कर लगभग सभी भक्त लोग राधा कुंड चले गए हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने। और प्रद्युम्न प्रिय ने प्रभु जी को निवेदन किया कि राधा कुंड आविर्भाव दिवस के उपलक्ष में कुछ विशेष आयोजन किया जाए। पर प्रभु जी ने कहा हमारे पास श्री राधा कुंड का जल है, हम 12 बजे रात्रि को अपने सिर पर जल डालेंगे। प्रभु जी की बात सुनकर प्रद्युम्न प्रिय ने कहा अगर अलार्म लगा लेंगे तो ठीक रहेगा। प्रभु जी को मैंने कहा कि अगर अलार्म लगा लेंगे तो ठीक है, पर प्रभु जी ने मना किया अलार्म लगाने से कि कोई जरूरत नहीं है, अगर निद्रा स्वयं खुल जाएगी तो ठीक। आश्चर्य तब हुआ ठीक रात 12 बजे पर प्रभु जी को श्री कृष्ण ने जगा दिया और प्रभु जी की आंख खुल गई और प्रभु जी ने राधा रानी की कृपा स्वीकार कर ठीक 12 बजे स्वयं अपने ऊपर जल डाला और फिर प्रद्युम्न प्रिय को जगाकर उसके सिर पे भी जल डाला। जब सभी भक्त राधा रानी की कृपा प्राप्त करने राधा कुंड चले गए थे परंतु जो स्वयं राधा रानी के विशेषज्ञ में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं उनके लिए यहीं पर उनकी कृपा उपलब्ध है। जिस पर प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी को प्राप्त हुई, प्रभु जी और प्रद्युम्न प्रिय को इस घटना से महान आश्चर्य और विस्मय हुआ। ये हरे
तो राधा कुंड का जल जो है मेरे पास रखा हुआ है, तो मेरा रोज का नियम है कि स्नान के बाद कुछ बूंदे राधा कुंड की जलकी में डालता हूँ। तो ये बहुत सालों से चल रहा है और मैं जल मंगा लेता हूँ उसी समय का, जो रात में 12 बजे जब आविर्भाव होता है राधा कुंड का। तो अभी तो मेरे पास कई साल पुराना जल रखा हुआ है, तो मैंने मंगाया भी नहीं, कई सालों से मंगाया भी नहीं है। और कुछ बूंदे डालते हैं तो वो जल बहुत दिन तक चलता भी है। तो ये बता रहा हूँ आपको कि ये नियम मेरा बना हुआ है। अब आप लोगों की ओर से कुछ और कहना है? हाँ जी, आए घरे सबको सुनाई पड़ रहा है जोर से बोलो। राधाकुंड में स्नान नहीं करना। हाँ हाँ, इस पर अच्छा इस पर प्रकाश डालना है, मतलब ये विवाद है राधाकुंड में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर विवाद चल रहा है ना। और कुछ भक्तों का कहना है कि स्नान करना चाहिए, कुछ भक्तों का कहना है स्नान नहीं करना चाहिए। तो अभी स्पष्ट आदेश मिला है इसको उनके जो अधिकारी हैं उनकी ओर से, गोपेश्वर को आपको भी पता होगा, जो ऊपर से जो मतलब आदेश मिला है वो ये है कि स्नान ना करके और हम जो है सिर में जल छिड़क दें। तो प्रभुपाद ने शुरू में स्नान किया था और भक्त लोग भी स्नान करते थे, लेकिन जब प्रभुपाद ने देखा कि भक्त लोग जो है उसमें तैर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, अपना खेल कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने फिर महसूस किया कि इससे जो है अपराध होता है राधा कुंड का। तो ये जो है राधा कुंड इसलिए नहीं है कि आप इसको स्विमिंग पूल बनाइए, तो इसलिए प्रभुपाद ने मना किया। तो अच्छा यही है कि हम स्नान ना करें, ज़्यादा अच्छा यही है, तो इसमें ज़्यादा सुरक्षा है कि प्रणाम करें और आदर पूर्वक। और चूंकि राधा कुंड अब मतलब क्या है कि पूरे विश्व में ख्याति हो चुकी है ना, तो अपने मतलब एक जिसे तो कहें कि सामान्य बुद्धि से भी अगर हम देखें तो क्या होगा कि भाई सब लोग स्नान करेंगे तो जो पानी है तो वो मैला होगा, है कि नहीं, ज़्यादा मैला होगा। तो अच्छा ये है कि भाई स्नान हम ना करें और उसको एक सामान्य बुद्धि से अगर देखें तो भाई ये भी एक मतलब कारण है कि सब लोग स्नान ना करें। वैसे तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मतलब बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब खोजे थे राधा कुंड श्याम कुंड तो थोड़ा थोड़ा पानी था, पानी तो सीमित है इसमें, 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई है, लेकिन वो मिट्टी मिट्टी थी तो थोड़ा थोड़ा पानी था, गड्ढे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनको जो है गहरा बनाया और चौड़ा बनाया, बहुत बड़ा आकार दे दिया है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत बड़ी कृपा है, और कितने अच्छे मतलब वो घाट बना दिए, सीढ़ियाँ बना दी राधा कुंड के लिए, तो ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया है ना। लेकिन अब हम लोगों के लिए ज़्यादा उचित यही है कि अगर जाएं तो दर्शन कर सकते हैं और जो है कुछ जल सिर में डाल सकते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ जी है? अरिष्टासुर किस अपराध के कारण? गर्ग संहिता में लिखा है कि बृहस्पति के शिष्य थे वरतंतु, तो जो है बृहस्पति एक बार आए उस स्थान में तो ये जो है अपना हाथ पैर फैलाए हुए बैठे रहे, तो ये मतलब एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना। तो बृहस्पति ने कहा कि तू मेरे सामने शिष्य होकर के भी बैल की तरह बैठा हुआ है तो तू बैल बन जा, है ना। तो फिर जो है अरिष्टासुर को जो है भगवान ने फिर उन्होंने जब क्षमा मांगी तो बृहस्पति ने फिर बताया कि आगे चल करके भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अरिष्टासुर को मार करके जो है भगवान ने जो है अपने गोलोक धाम में भेज दिया, तो बहुत बड़ा उद्धार हुआ। लेकिन ऐसे शिक्षा भी मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना। तो आज के दिन मतलब इस कार्तिक महीने में ही दो वृक्षों का भी भगवान ने उद्धार किया, तो वे भी जो है नारद जी को देख करके नग्न खड़े थे, सम्मान नहीं किया है ना, तो वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। और जो बर्तंतु है वैसे बैठे रहे हाथ पैर फैलाए तो बैल की योनि प्राप्त हुई। तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार भक्तों में भी जो है मतलब ये चेष्टाएं देखी जाती हैं कि ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे चलते हैं, कोई सम्मान नहीं करते हैं, कोई अपने से ज़्यादा सम्मानित होता है तो कुछ नहीं, जैसे देखें तुरंत ही थोड़ा सिर से या हाथ से इशारा करना चाहिए। इतना भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर को जो है ज़मीन में लगाएं, अब कोई लगाए तो अच्छा है और अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी देखते हैं तो थोड़ा सा मतलब सम्मान का जो भाव है वो प्रकट करना चाहिए, इशारा प्रकट करना चाहिए। तो ये तो कम से कम होना ही चाहिए इतना ना, अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर इसमें जो है निश्चित रूप से पतन है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलो। अच्छा हाँ, इन गोकुल जो है जब कहा गया ना तो यहाँ पर गोकुल का मतलब वो गोकुल नहीं है वो महावन, बल्कि गोकुल इसको भी कहते हैं गोष्ठ, उसमें गोष्ठ लिखा है तो गोष्ठ का मतलब है जहाँ पर भी जो गौ में और ग्वाले रहते हैं तो वो सब गोष्ठ कहलाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ,
तो जैसे राधा ने बोले कि गोवर्धन नहीं है, जमुना नहीं है, तो मैं वहाँ आना नहीं चाहता हूँ, तो फिर भगवान ने ठीक है वो भी सब मैं अपनी मतलब से दुनिया, और फिर यहाँ पर गोवर्धन और जमुना नदी भी मतलब यहाँ पर है, तो राधा कुंड और जो श्याम कुंड वहाँ जो दुर्लभ वृंदावन वहाँ पर नहीं है, मतलब ओनली हमारी भौतिक जगत है।
राधा कुंड श्याम कुंड वहाँ गोलोक धाम में भी हैं और कैसे प्रकट हुए वो भी इसमें आया है। राधा कुंड महिमा माधुरी एक बड़ी अच्छी किताब लिखी महानिधि स्वामी ने, वो गोलोक धाम में भी प्रकट हुए, वो अलग लीला है राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर हैं वो। ठीक है, मानसी गंगा, आपका नाम क्या है? मानसी गंगा नाम है, कृष्ण गंगा हाँ बोलिए। नहीं, किसकी प्रेयर, जैसे इंद्र ने अगर प्रार्थना की या ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो उनकी तो अलग प्रार्थना है, उनकी तरह प्रार्थना है,
क्योंकि वो तो जानते हैं।
हाँ गोपियाँ, हाँ ऐसा है ना कि अब माता यशोदा का जो भाव है कृष्ण के प्रति, वात्सल्य का है, गोपियों का है, मतलब माधुर्य भाव है, तो इस भाव की पुष्टि के लिए जरूरी है कि वो ज्ञान ढका रहे, लेकिन इसको अज्ञान नहीं कहते, अज्ञान नहीं है इसमें, वो ज्ञान जो है ढक जाता है, क्योंकि वो रसास्वादन करने के लिए वो जरूरी है कि वो ज्ञान ढक जाए और तभी वो कृष्ण के निकट आएंगे, वो कृष्ण की सेवा करेंगे, तो भाव को पुष्ट करने के लिए जरूरी है कि वो ज्ञान ढक जाए, लेकिन वो अज्ञान कभी नहीं होता है, क्योंकि वो जो है ना भगवान हमेशा वो किसी न किसी प्रकार से संकेत करते ही रहते हैं और उनको स्पष्ट जो है संकेत मिलते रहते हैं कि ये भगवान है, तो इसको अज्ञान नहीं कहेंगे। हाँ
याद आता है, हाँ
फिर हाँ फिर विस्मृत हो जाता है, ढक जाता है। धन्यवाद। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद पंच तत्व सीताराम लक्ष्मण हनुमान यशोदा दामोदर की जय। इसको निकालना,
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे श्री सीताराम जी का, आज बहुत शुभ दिन है, सबसे शुभ दिन है।